राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन। आज 15 अगस्त को वृंदावन धाम में आपका स्वागत है प्रातः काल के भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के ऊपर चर्चा चल रही है और तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय चर्चा का विषय है और इस अध्याय का शीर्ष है वैकुंठ लोक का वर्णन। तो आप भाग्यशाली हो कि इस भौतिक जगत में बैठ के वैकुंठ लोक का वर्णन सुन रहे हो। जिसके बारे में सुनेंगे और वहां की महानता का पता लगेगा तो उसको प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होगी। तो इसलिए भागवत में ये वैकुंठ का वर्णन का अध्याय है। लेकिन समझना चाहिए कि वैकुंठ में जाने के अधिकारी कौन है। जो अधिकारी है वो वहां गए थे इसलिए वैकुंठ का वर्णन हमारे को सुनने को मिला है और वो अधिकारी थे चार ब्रह्मा जी के पहले पुत्र चार कुमार ब्रह्मा जी के। और ये चार कुमारों को श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों में गिना गया है। पहला अवतार चार कुमार है। तो भगवान के अवतार भगवान के धाम में जाना चाह रहे हैं और भगवान के दरवाजे पे खड़े हुए भगवान के दरबान उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। है ना मजेदार बात। भगवान के अवतार है भगवान के घर में जा रहे अपने घर में जा रहे और जाने नहीं दे रहे है आश्चर्य की बात है बड़ा अद्भुत है। लेकिन सीखने की बात क्या है कि पिताजी ब्रह्मा ने अपने बेटों को प्रेरणा दी कि वैकुंठ में जाओ। इससे सीखना क्या चाहिए कि भले परिवार के बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि अपने बेटों को वृंदावन जाने के लिए प्रेरणा दें। ये भगवान का घर है सीखना चाहिए ना। ब्रह्मा जी अगर नहीं बोला होता कुमारों को कि वैकुंठ जाओ तो हमें कहां से वैकुंठ के वर्णन का पता लगता। तो कुमार वैकुंठ गए ये बात तो भागवत में है लेकिन आपको क्या सीखना चाहिए। जो छोटे हैं कल जो ब्रह्मचारी है वो तो वैकुंठ में ही रहे तो अच्छा है और जो गृहस्थ में जाए वो अपने बच्चों को हमेशा ये शिक्षा दें कि समय समय के ऊपर तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए वृंदावन जाना चाहिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए द्वारका जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए हमको। ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को वैकुंठ जाने का की प्रेरणा दी तो ये सीखने की बात है हमारे लिए इसमें से। और फिर बच्चों ने आज्ञा मानी भी तो पिताजी का दायित्व तो प्रेरणा देना है लेकिन बच्चे भी आज्ञाकारी होने चाहिए आज्ञा माने चाहे उसमें मुश्किल भी आए। वैकुंठ जाना कोई आसान बात नहीं है तो चार कुमारों ने बहुत बड़ी योग सिद्धि के द्वारा वहां जाने का जो संकल्प से चले गए तो उन्होंने भी उसकी तैयारी की तब गए। तो ये दो बातें हैं कि अब चार कुमार वैकुंठ में पहुंच भी गए छह दरवाजे पार कर गए बाहर का सुंदर वर्णन भी सुना जो रोज आ रहे हैं उनने। सातवें दरवाजे के ऊपर दो वैकुंठ के द्वारपाल खड़े थे भगवान विष्णु के जय और विजय। उन्होंने इन चार कुमारों को देखा जो निर्वस्त्र थे दिगंबर वेश में थे। दिगंबर वेश का अर्थ क्या है दिग मतलब दिशाएं अंबर का मतलब वस्त्र उनका वस्त्र दिशाएं थी इसका मतलब कुछ भी पहना हुआ नहीं था। उम्र क्या थी 5 साल वो कभी 5 साल से बड़े नहीं होते। ये उनके पास योग सिद्धि है कि हमेशा 5 साल में ही हम अपने आप को बनाए रखते हैं तो उससे लाभ क्या है वो बच्चे जैसे हैं। बच्चे जैसे का मतलब किसी में पक्षपात नहीं किसी से द्वेष नहीं तो और कोई काम की वासना है ही नहीं 5 साल के बच्चे की उम्र में। तो उन्होंने अपने सुरक्षित आयु में अपने आप को ऐसे सीमित करके रखा है अपने योग सिद्धियों से। अब वैकुंठ के जो दो द्वारपाल थे उन्होंने कहा बच्चों का क्या काम वैकुंठ में और वो भी निर्वस्त्र कहां जा रहे हैं अंदर वो उनको पहचान नहीं पाए। सबसे बड़े वो थे इस भौतिक जगत में और उनको सबसे छोटा समझ के और क्या किया उन्होंने उनके हाथ में जो डंडे थे ना, वो डंडे ऐसे आड़े दे दिए, उनसे बात नहीं की, डंडे आड़े दे दिए, तुम नहीं जा सकते हो, इसका अर्थ ये हुआ, डंडे उन्होंने आड़े दे दिए। जब डंडे उन्होंने आड़े दे दिए तो इन चार कुमारों ब्राह्मणों को, जो पिताजी से वैकुंठ का वर्णन सुना था कि वहां के लोग बहुत दयालु है, बहुत उदार हैं, और न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न भय है, तो ये डंडे क्यों दे रहे हैं, इनको हमसे काय डर काय का है। तो उनको जरा संदेह हो गया कि ये आदमी असली है कि नकली है। आज का श्लोक ये चार कुमारों का विचार है। चार कुमारों ने कहा है, ऐसे तो नहीं लिखा है। अब भागवत की रचना कैसे हुई? नारद जी ने व्यासदेव को प्रेरणा दी, क्या कहा? जाओ समाधि में बैठो, भगवान की लीलाएं आपके हृदय के पटल के ऊपर स्फुट होंगी। इसका अर्थ है कि व्यासदेव ने जो कुमारों के मन में था वो जाना। लिखा नहीं कुमार वाच ऐसा लिखा नहीं है मेरे ख्याल। कुमारों के मन में क्या विचार है उस वक्त में, वो व्यासदेव ने जाना कि कुमारों ने क्या सोचा। अब आज ये श्लोक है, कुमारों ने वैकुंठ के द्वारपालों के द्वारा उनको अंदर जाने से रोकने के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तो ये चार कुमारों की प्रतिक्रिया है, सिद्धांत है, सिद्धांत के आधार के ऊपर बात कर रहे हैं। वैकुंठ में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, वैकुंठ के ऊपर उनको संदेह नहीं हुआ, लेकिन इन दो व्यक्तियों को उन्होंने समझा के हो सकता है ये असली है कि नकली है, उनको डाउट हो गया। प्रभुपाद ने शब्द लिखा इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर का मतलब नकली आदमी यहां खड़े हो गए हैं क्या। तो आइए इस श्लोक का हम आवृत्ति करते हैं, मिलकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये विचार चार कुमारों के हैं, उनको जब रोका गया वैकुंठ में जाने के, तब नहि अंतरम भगवती है समस्त कुक्षावा, आत्मानमात्मनि नभो नभस्व धीरा, पश्यन्ति यत्र युवः सुरलिङ्गिनो किम्, व्योतिपादितं है उदरभेदि भयं यतो अस्य, नहयन्तरं भगवत इह समस्त कुक्षा, आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः, पश्यन्ति यत्र युवः सुरलिङ्गिनोः किम्, व्यतिपादितं है उदरभेदि भयं यतो अस्य। नहयन्तरं भगवती है समस्त कुक्षा, आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः, पश्यन्ति यत्र युवः सुरलिङ्गिनोः किम्, व्योतपादितं हय उदरभेदि भयं यतो अस्य, आत्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत युवासुरलिङ्गिनो किम् व्योतोपादितं भेदभयम् भयम् ययो मत चलो चल जा चालू कर दिया चल महात्मा नमात्मने नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत युवयोसुरलिङ्गिनो किम् तो ये मुनियों ने बोला ऐसे लिखा है उन्होंने सोचा नहीं उन्होंने बोला इससे पहले वाला श्लोक कल वाले श्लोक में था मुनियों ऊंचो सबने साथ बोला क्या बोला है आज तो ये हम सुनेंगे न नहीं ही क्योंकि अंतरम भेद अंतर भगवती भगवान में इह यहां समस्त कुक्षों हर वस्तु उधर के भीतर है आत्मानं जीव आत्मने परमात्मा में नभ वायु की अल्प मात्रा नभसी संपूर्ण वायु के भीतर एवा सदर्श धीरा विद्वान पश्यन्ति देखते यत्र जिसमें युवो तुम दोनों का सुरलिंगिनो वैकुंठ वासियों की तरह वेश बनाए किम कैसे व्युति अव्युतिपादितम विकसित या जागृत ही निश्चय ही उदर भेद शरीर तथा आत्मा में अंतर भयम डर यतः जहां से अस्य परमेश्वर का श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य वैकुंठ में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाश में पूर्ण सामंजस्य रहता है। आई बात समझ में? चश्मे की डब्बी में हवा है ना, ये खुली हुई इसके अंदर हवा में है ना, और बाहर भी चारों हवा है ना, इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। तो इस छोटे डब्बे में जो हवा है आकाश है उसमें और चारों ओर आकाश में कोई अंतर नहीं, इसको बंद कर दिया, इसको बाहर निकल गई तो बाहर आ गई तो कोई परेशानी नहीं किसी को की, और खोल दिया इसके अंदर चली गई तो किसी को परेशानी नहीं की। इसको घट आकाश और पट आकाश बोलते हैं। घट आकाश का अर्थ यह है मटका, मटके में, मटका खाली होगा उस हवा होगी ना, उल्टा करते पानी में तैरते हैं ना, अंदर हवा है इसलिए ना। अब मटका फूट गया तो हवा कहाँ चली गई, सब में मिल गई। एक उदाहरण ये देते हैं, तो इन दोनों हवाओं में कोई अंतर नहीं है क्योंकि एक ही है दोनों एक दृष्टि से। तो ऐसे वैकुंठ के रहने वाले जो जीव हैं और भगवान वैकुंठ नाथ है, उन्हों के अंदर कोई भी ऐसा ईर्ष्या या द्वेष का भेदभाव नहीं है, वो सब सामान्य, अंतर नहीं, नहे अंतर, उनमें कोई अंतर नहीं है, तो भेदभाव नहीं है। जहां भेदभाव नहीं होता है, जहां ईर्ष्या नहीं होता है, वहां भय क्यों होगा? भय तो तब होता है जब मेरा है तेरा है, तब भय होगा ना, जब मेरा तेरा है नहीं है तो भय क्यों होगा? तो ये पहली दो लाइनों में ये कहा गया है। ये चार कुमार कह रहे हैं, कुमारों की अपनी सहनता है, संत कुमार सहनता, और संत कुमार सहनता निम्बार्क संचार संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। वो मुख्य ग्रंथ निम्बार्क संप्रदाय है, जिसमें राधा कृष्ण की उपासना और राधा का तत्व सर्वश्रेष्ठ है, इसका वर्णन है। तो ये चार कुमार एक वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हैं, महान आचार्य नहीं प्रवर्तक हैं, आचार्य तो निम्बार्क आचार्य है लेकिन उसके प्रवर्तक हैं चार आचार्य ही, संत कुमार सहनता, और ये सब शिक्षाएं इनकी। तो ये अपनी बात को कहते हुए कह रहे हैं, वैकुंठ में, वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य है। ये बात समझ में आई अभी? जैसे इस हमारे कक्ष के अंदर जो वायु है, इसमें और बाहर की वायु में कोई अंतर तो नहीं है, आ सकती है जा सकती है, तो इसी में कोई अंतर भेदभाव नहीं है। ऐसे वैकुंठ में रहने वालों में किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई छोटा है बड़ा है ऐसा भाव नहीं, ये इसका कहने का भाव यहां ये है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? जब एक दूसरे में कोई द्वेष भी नहीं है, एक दूसरे में कोई अंतर भी नहीं है, तो फिर भय यहां कहां से आ गया? इसका अर्थ क्या हुआ कि भय का कारण क्या है? जब मेरा और तेरा होता है और एक दूसरे से प्रेम और विश्वास के बजाय द्वेष और ईर्ष्या होती है, तब भय होता है। और ये चीजें वैकुंठ में नहीं है, तो वैकुंठ में भय नहीं होना चाहिए। तो उनसे ये कहने के बाद चार कुमारों ने निर्णय क्या निकाला? निर्णय ये निकाला, ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं। कपड़े तो वैकुंठ वासियों जैसे पहने हुए हैं, किंतु इनका ये असामंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ? फिर उनके अंदर भेद बुद्धि कहां से आ गई? भेद बुद्धि कहां से आ गई? इसके लिए जो आखिरी लाइन लिखी हुई है उसका अर्थ क्या लिखा है? आत्मा और शरीर में भेद क्यों करते हैं यहां? इसका भाव असल में क्या है? इसका भाव असल में यह है कि वैकुंठ के वासियों का शरीर कोई चाम हाड मांस का तो है नहीं, पांच भूतों का बना हुआ शरीर तो वैकुंठ में नहीं होता ना। पांच भूतों का बना हुआ शरीर होता अगर तो फिर बूढ़े भी होते और मरते भी, वहां कोई मरता भी नहीं है बूढ़ा भी नहीं होता। इसका मतलब वहां का शरीर जो है वो चिन्मय है, उसके अंदर पृथ्वी आकाश वायु ये कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे शरीर को के बच्चे का शरीर है और मेरी आत्मा के अंदर भेद कैसे देख लिया जब वहां भेद है ही नहीं? बात समझ में आ रही है? जैसे आपको सिर्फ उदाहरण दे के आगे चलते हैं, वो अष्टावकर मुनि जिसके अंगों में आठ जगहों के ऊपर टेढ़ था, पांव टेढ़ा था, हाथ टेढ़ा था, सर टेढ़ा था, अष्टवकर कहते, वकर का मतलब उसके अंदर बल थे। वो जब महाराज जनक की दरबार में प्रवेश किया तो लोग हंसने लगे। वो जब लोग हंसे तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी दरबार में ये कसाई, ये चमार और ये हड्डी का बिक्रा करने वाले क्यों बिठा दिए? अरे सब बैठे हुए मंत्री बड़े, महाराज ये क्या कह रहा है? महाराज ने कहा आप ये हमारे मंत्री हैं, ये बड़े विद्वान हैं, ये धीर पुरुष हैं, आप इनको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये चमार है, कसाई है और ये हड्डियों के व्यापारी हैं? बोला महाराज इतने बुद्धिमान होते तो मेरे शरीर को देखकर हंसे क्यों? इनको आत्मा की दिखाई नहीं दिए कि मैं आत्मा जो मुझ में है वो इनमें ही है ना? ये तो केवल शरीर की टेढ़ को देखे ना, तो शरीर को कौन तोलता है? कसाई तोलता है कि मांस कितना है, चमड़ी को चमार देखता है कि अच्छी है कि खराब है, और हड्डी वाला देखता है कि हड्डी इसकी कितने की। इसका मतलब ये केवल मांस और चमड़ी और हड्डी को देखते, आत्मा की दृष्टि तो इनमें है नहीं। तो ये अंतर दोनों में दिख रहा है कि जब यहां हार्ड मांस चाम की बात ही नहीं है तो हमका बच्चे का शरीर इनको क्यों दिखाई दिया? इनको आत्मा का दर आत्मा को क्यों नहीं देख सकते हैं? यही बात व्यास देव को नारद मुनि ने कहा था कि आपने वेदों के अंदर, आपने पहले तो कह दिया कि आपने मन को और आत्मा को और शरीर को एक मान लिया और सबको भोग के अंदर इतना लिप्त कर दिया कर्म कांड के द्वारा, क्या अब उनको हम कहेंगे भगवान की भक्ति करो तो वो तो उनकी समझ में आएगा ही नहीं। तो प्राय ये जो बात है इससे ऐसे समझना चाहिए कि संसार के अंदर प्राय लोग शरीर और आत्मा के अंदर भेद नहीं जानते, दोनों अलग चीजें नहीं जानते, शरीर के स्तर के ऊपर ही है। तो वैकुंठ में कोई शरीर के स्तर हो के ऊपर हो यह संभव नहीं है, वो तो सारे ही आध्यात्मिक प्राणी हैं, है तो जीव लेकिन सच्चित आनंद उनका शरीर है जैसे भगवान का। ये बात तो वैकुंठ के, वैकुंठ में जो शरीर है उनका शरीर तो हार्ड मास चांस का बना हुआ तो नहीं है, ना ही वो ब्रह्मा की ब्रह्मा के बनाए हुए है, तो उनके अंदर ये भेद बुद्धि कहां से आ गई? ये बात कुमारों की ठीक लग रही है कि नहीं लग रही? कुमारों की बात में सत्य लग रहा है ना? क्या शब्द है व्योतिपदितम, ये भेद बुद्धि, ये क्या उधर उधर भेद बुद्धि। तो ये तो हमारे को भाई हमारा पेट और शरीर और ये आंख बाहर से देख रहे हैं, इनको आत्मा का दर्शन, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, ये कैसे लोग हैं, ऐसे क्यों कहते हैं? तो ये श्लोक का अर्थ साफ हो गया। दोनों वैकुंठ वासियों ने हमारे शरीर को देख करके हम बच्चे हैं ऐसे हमको रोका क्यों? क्योंकि वैकुंठ में शरीर और आत्मा में तो भेद है ही नहीं, तो अंतर ही नहीं है वहां भगवान में और कुक्षा। यहां कुक्षा का अर्थ ये है, वैसे कुक्षी कहते हैं पेट को, तो सब कुछ भगवान के पेट में है ऐसे माना जाता है कि सब कहां से निकले? भगवान महाविष्णु के पेट से निकले, तो सब कुछ ही भगवान के पेट में समाये। सारे ब्रह्मांड कहां से निकलते हैं? भगवान के अंदर से निकलते हैं। तो भगवान के अंदर से जो निकली चीज है उसमें भेद कैसे होगा? सभी एक जैसे होना चाहिए ना, जब सारी एक जगह से निकले हैं तो अलग क्यों? कुक्षी का अर्थ यहां है भगवान के उधर से निकले हुए सभी वस्तुएं उसी जगह से आई हुई है, उधर भेद। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह ये भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश है। अब ये प्रभुपाद जी क्या कहने जा रहे हैं? प्रभुपाद जी कहने जा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर देखें के कारागृह है ना, उत्तर प्रदेश में है, हर जनपद में कारागृह है, फिर सेंट्रल जेल भी है, कहीं दो चार पांच जगह पे होंगे, लेकिन जेलों का जो सारी जगह है वो लोगों के रहने की जगह की अपेक्षा बहुत छोटी है ना, मतलब क्राइम वाला जो 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 अपराधियों के लिए जगह है जेल वो छोटी है, सामान्य लोगों के लिए रहने के लिए जगह है वो बड़ी है, ऐसे है कि नहीं है? मानो के जहां 4 मील का एरिया है उसमें 400 गज में जेल बनाई हुई होगी, बाकी सब तो सामान्य लोगों के रहने के लिए होंगे, ऐसा इसका भाव ये है कि विभाग दो हैं, एक ही गवर्नमेंट के हैं, दोनों में गवर्नमेंट ही काम करती है, दोनों गवर्नमेंट के अंतर होते हैं। ऐसे भगवान के भी दो विभाग हैं, एक विधा विभाग है ये भौतिक जगत, जो कौन सा जिसको क्या कहा जाता है, इस दुनिया को क्या कहा जाता है, कारागर। ये कौन सा विभाग है, क्रिमिनल। इसका मतलब हम सब क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल का अर्थ क्या होता है, जो सरकार के नियम का उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे। तो हम सबने कैसे भी भगवान की इच्छा के विपरीत उनके कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इस जगत में है। जो सामंजस्य जीव और भगवान के बीच में होना चाहिए उसको हमने तोड़ा है। भगवान के अधीन रहने के बजाय हम स्वतंत्र रहने के भाव से इस दुनिया में आ गए। तो ये दुनिया क्या है, भगवान के सृष्टि का वो विभाग है जो गवर्नमेंट का क्रिमिनल विभाग होता है, कारागार होता है। और जबकि तीन हिस्से और जो हैं, तीन चौथाई, ये वन एक चौथाई हो गया, तीन चौथाई सिविल है। सिविल का मतलब क्या है, वो लोग जो राजा का नियम का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, और जो राजा है उसके साथ सहमत हैं, उसके सहयोगी और सेवक है, तो वो बाहर हैं। तो इसका मतलब जो तीन चौथाई वैकुंठ है अथवा आध्यात्मिक जगत है, वहां रहने वाले सारे भगवान के साथ असमंजस है ना, क्या लिखा है, इन हार्मोनी, अंग्रेजी में हार्मोनी है, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन क्या किया है, समंजस। तो ये बात समझ में आ गई कि जेल में रहने वाले भी सरकार के अधीन है और बाहर रहने वाले भी सरकार के अधीन है, लेकिन अंदर रहने वालों के लिए छोटा कमरे तक ही सीमित है, वहां से बाहर नहीं जा सकते, और बाहर रहने वाले देश से बाहर नहीं जा सकते बगैर इजाजत के, लेकिन है उनके ऊपर भी कानून चलता है, वो कानून मानते हैं, उन्होंने नहीं माना इसलिए वो अंदर है। तो पहले ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भगवान की सृष्टि में दो विभाग हैं, एक आध्यात्मिक जगत जहां रहने वाले भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, भगवान से असमंजस में रहते हैं, और दूसरे इस भौतिक में रहने वाले हैं जो भगवान से और भगवान के नियम का कैसे भी विरोध किया है, इसलिए संसार के अंदर है। लेकिन थोड़ा सा यहां एक और चीज भी सुन लेनी चाहिए कि सारे जो इस जगत में हैं वो सारे अपराधी नहीं है, भगवान की इच्छाओं के अनुसार भी कुछ लोग इस धरती के ऊपर आते हैं, उनको साधु संत महात्मा कहते हैं, वो अपराध करके नहीं आए हैं, वो भगवान की इच्छा से यहां का सुधार करने के लिए आए हैं, यहां के लोगों का उद्धार करने के लिए आए। जैसे जेल के अंदर रहने वाला जेल का सुपरिटेंड, जो जेल सुपरिटेंड है, जेलर है, वो जेल के अंदर अपराध के कारण नहीं आया है, जेल में रहने वालों का संचालन करने के लिए और उनको सुधारने के लिए आया है। तो ये थोड़ा सा एक बात समझनी चाहिए, कुछ महात्मा साधु इस संसार में भगवान की इच्छा से आते हैं, जो रिफॉर्म करते हैं, जो लोगों में परिवर्तन लाते हैं, उनकी स्वतंत्र बुद्धि को परिवर्तित करके भगवान की सेवा में लगाने का प्रचार करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन ऐसे भी लोग इस धरती के ऊपर आते हैं, उनको कहते हैं भगवान के धाम से आए हुए। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे जीव जो के भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं, ब्रह्मांडों का अर्थ ये है कि ये ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं ना, एक ये बहुत छोटा है, ऐसे कितने ब्रह्मांड है, बोलो असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांड का मतलब राई के दाने मुट्ठी में ले लो आप, जितने राई के दाने हैं इससे ज्यादा ब्रह्मांड है, धूली के कणों से ज्यादा, मुट्ठी में आने वाले से ज्यादा ब्रह्मांड है। तो हम जिस लोक में रह रहे हैं ऐसे असंख्य और लोक है। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, जन्माष्टमी आ रही है, आप यहां जन्माष्टमी का उत्सव में रहिए हमारे साथ। प्रभुपाद ने कहा, रोज जन्माष्टमी होती है, कृष्ण किसी न किसी लोक में रोज ही अवतार ले रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि हम सीमित एक लोक को देखते हैं, साधु असंख्य लोकों को भी देख सकते हैं। जैसे हम सिर्फ अपने घर को या अपने गांव को जानते हैं, लेकिन जो जो यहां का प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे अपने देश को जानता है, उसके पास पूरे देश का समाचार है। हमारे को सिर्फ अपने घर का समाचार का भी पता नहीं है कि आज गोभी चाहिए कि आलू चाहिए घर में, उससे ज्यादा हमको पता नहीं है क्या होना चाहिए दुनिया में। तो यहां ये बात समझनी चाहिए कई ब्रह्मांड है भौतिक, और हर ब्रह्म एक भगवान हर एक दिन कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं, इतने असंख्य ब्रह्मांड है। आने से पहले मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी को चिट्ठी आई और मालती माता जी और दूसरी एक माता जी, जब भी भारत से कोई चिट्ठी आती थी तो बड़े प्रसन्न होते थे, कोई खास शुभ समाचार आया होगा प्रभुपाद के पास। तो बैठे प्रभुपाद ने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी रख दी, तो इन्होंने आकर पूछा भारत से चिट्ठी आई थी? बोला हाँ। बोला अच्छा समाचार? बोला हाँ अच्छा। बोला क्या है जरा बताइए? प्रभुपाद ने कहा मेरी बहन भगवत धाम चली गई, माय सिस्टर डाइड। और बोला और कहते हैं शुभ समाचार है बहन ये कैसे है? उनको तो ऐसे लगा कि दुनिया में ये शुभ समाचार तो नहीं कहते हैं किसी का मृत्यु होना। लेकिन प्रभुपाद ने कहा वो बहुत बड़ी वैष्णवी थी। तब वो कहते हैं हमने सोचा कि प्रभुपाद सिर्फ इस लोक को नहीं देख रहे हैं, वो अनंत ब्रह्मांड को देख रहे हैं कि जो वैष्णवी है इसका मतलब जहां भगवान होंगे वहां गई होगी ना, तो ये दुख का समाचार थोड़ी है। वो अपने घर कोई जाए तो ये दुख का समाचार थोड़ी है, जेल से कोई निकल के अपने घर जाए तो इसमें रोने की कोई बात है क्या? जेल में रहने वाला कोई अंदर जेल से निकल के आता है तो बाकी जेल में रोते हैं क्या? सभी कहते हैं भैया बाहर जाओ तो हमारे छुड़ाने का कोई प्रबंध करना, ये थोड़ी है कि कहते अरे भैया कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के और हम इस दुनिया में कोई यहां से छूट के जाता है तो ऐसे रोते हैं कि ये वापस अभी का अभी आ जाए इसका अर्थ कि हम इस दुनिया के हितेशी नहीं है। हम भला चाहते होते तो रोते थोड़ी, कहते अच्छा है बेचारा। हम पता है क्यों रोते हैं? हमें मालूम है इसने बड़ी बेईमानी की है, बहुत दुख भोगेगा और इसके लिए अभी से रोके पूरा कर लेते आपको मालूम है अभी भी साधु संत का जब तिरोभाव होता है तो भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए उसको शमशान में ले जाते हैं, भजन कीर्तन करे वो करते हुए जाते हैं कि भाई ये भगवत धाम गया होगा, और सामान्य लोग मरता है तो सब रोते हुए पीछे जाते हैं कि यहाँ हमको दुख दिया अभी आगे जाके क्या करेगा देखो हंसी की बात याद आती है, एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया, अग्नि संस्कार करके वापस आया, दुख में ऐसे बैठा हुआ था, अचानक आकाश में बादल का बहुत ज्यादा आवाज होने लगा, बिजली चमकने लगी, बोला लगता है ऊपर पहुंच गई लगता है ऊपर पहुंच गई है इसका मतलब यहां भी घर के सारे बर्तन तोड़ दिए आओ ऊपर वालों को पता लगेगा हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद इस लोक से दूर तक देख सकते थे, इसका अर्थ ये है। तो कई ब्रह्मांडों का आश्रम असंख्य ब्रह्मांड है, और ब्रजा नदी के अंदर जैसे बाल तैरते रहते हैं ना पानी में, ऐसे कई ब्रह्मांड लुटकते रहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, असंख्य ब्रह्मांड लुटक रहे। तो हम तो एक छोटा सा ब्रह्मांड इसमें रहते हैं, या एक आप इसको ऐसे समझ लो कि दिल्ली के अंदर इतने सारे घर मकान हैं, उसके अंदर एक आदमी एक रूम के किसी फ्लैट में रहता है और वो समझता है यही मेरी दुनिया है, ऐसे हम एक रूम के फ्लैट में रह रहे हैं सारे समझते हैं यही दुनिया हमारे लिए, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है। ऐसे कई और ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांडों में निवासी हैं न्यूनाधिक, न्यूनाधिक का मतलब ऑलमोस्ट मतलब कुछ छोड़कर, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं। इसका मतलब भौतिक जगत में रहने वाले सारे अपराधी सवाय साधु पुरुषों को छोड़ के जो भगवान की इच्छा से आए हैं, बाकी भगवान के नियम का उल्लंघन करके आए, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्य पूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। कौन? जो भौतिक जगत में आए हैं वो, इसलिए वो इस दुनिया में आए हैं। सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित हैं और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ही वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है, अतः जब भी इस सामंजस्य में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया के पास में चला जाता है। इसका अर्थ क्या? कि भगवान आनंदमय है और भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति जब करनी होती है तो अपने से असंख्य जीवों को उत्पन्न करता है। एको बहुस्यात्, एक में से अनेक हो गए। तो हम सब कैसे पैदा हुए? भगवान के अंश हैं, तो जिसने पैदा की है उसकी सेवा करना हमारा काम है, उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा काम है। जब वो नहीं करते हैं तब हम इस संसार में भेजे जाते हैं। इसको हम कभी समझाने के लिए ऐसे कहते हैं कि एक गुरुजी अपने बहुत से शिष्यों को लेके घुमाने के लिए अमेरिका गए। चलो बड़ा अच्छा शहर है, घूमने चलते हैं। घूमने गए तो बोला आपने वापस चलना है, वापस अपने घर, बहुत टाइम हो गया, अपने पास घर जाना है। तो जो दो चार पांच ने बोला यहाँ तो अच्छा जगह है, हमारी चलने की इच्छा नहीं, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, हमको महाराज आज्ञा दीजिए। बोला क्यों? बोला यहाँ सुख सुविधा ज्यादा है। राज कैसा राज था वो? हम तो अमेरिका कह दिया, वो ऐसा राज था जिसके अंदर अंधेर नगरी चरबट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मूर्ख कर राजा था वो। 2 रुपये का किलो बैंगन, 2 रुपये किलो काजू था। तो इन्होंने कहा अरे महाराज बड़ा अच्छा है, अब आप गुरु महाराज आपके साथ जाएंगे, खिचड़ी खानी पड़ेगी, यहाँ 2 रुपये वाले काजू खाते नहीं चलते। तो गुरुजी ने कहा चलना चाहिए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आप शिष्यों मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु आपकी आज्ञा हमारे सर आंखों पे, लेकिन खाएंगे काजू। चलो गया गुरु जी, तो चला गया रमता वापस। 5-6 अच्छे थे उनके साथ चले गए जो आज्ञाकारी शिष्य थे, बाकी ज्यादातर रह गए पीछे, रह गए पीछे। राजा जो 2 रुपया किलो काजू और बैंगन बेचता था, उसका किसी आदमी ने कोई अपराध किया, उसको फांसी देनी थी, फांसी के लिए रस्सा बनाया, रस्सा थोड़ा बड़ा बन गया, जिसको फांसी लगानी थी उसके गले में आया नहीं। महाराज इसके गले में नहीं आता? बोले जिसके गले में आता है उसको डालो। ये जो काजू खा के गला उसका हमारी तरह मोटा था, पकड़ के लाए, बोला डालेंगे इसके गले में। अब बोलता है गुरु महाराज रक्षा करो, गुरु महाराज रक्षा करो। गुरु महाराज आए, बोला भाई क्यों? बोला महाराज फांसी पे चढ़ा रहे। बोला तुमको कहा था यहाँ खाजू खाओगे तो फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, तुम कहा चलो यहाँ मत रहो। नहीं महाराज अब चलूंगा, अब नहीं रहूंगा यहाँ। बोला पक्का चलेगा? हाँ महाराज पक्का चलूंगा। महाराज ने राजा को कहा मैं अभी आ रहा हूँ वैकुंठ से, इस वक्त मुहूर्त चल रहा है, इस मुहूर्त में जो यहाँ से जाएगा सीधा वैकुंठ का राजा बनेगा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आया हूँ। राजा ने बोला इसको फांसी मत दो, मेरे को फांसी दो, मैं जाता हूँ। तो ऐसे भगवान ने अपने से अनेक बना दिए, लेकिन जब कहा कि वापस चलो तो कुछ लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। बोला हम आपसे अलग सुख भोग करने का प्रयास करके देख लेते। तो इस लोग इस दुनिया में रहने वाले वो हैं जिन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया अथवा भगवान की इच्छा के विपरीत अलग भगवान से अलग होके भोग करने की वांछा की। भगवान के साथ भोग करना और भगवान से अलग होके भोग करना, जो भगवान के साथ भगवान के भोग में शरीक होते हैं या शामिल होते हैं वो वैकुंठ धाम में रहते हैं, जो भगवान से अलग होके भोग करना चाहते हैं वो इस भौतिक जगत में आते हैं। इसलिए हमारे को यह शिक्षा दी जाती है कि अब आप बंदर में रहिए, भगवान के भोग लगे और जो खिचड़ी आपको मिले यही खाइए और काजू के पीछे मत भागिए, नहीं तो फिर गले में फांसी डलेगी। तो असमंजस में रहना चाहिए भगवान के साथ। ये कारण बताया है कि हमारी उत्पत्ति भगवान के अंश में रूप में है, तो अंश को पूर्ण की सेवा करनी चाहिए। जब से हमने इसने सेवा में त्रुटि की है तब से हम इस जगत में आए हैं। तो कौन लाया है उसका भी कारण बताया है, जैसे ही भगवान से अलग हुए, माया के पास में हम अपने आप को बंधा हुआ हमने पाया। जैसे ही भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया तो माया ने अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए हमको पकड़ लिया। भगवान की बाहरंगा शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंगा शक्ति का सामंजस्य साम्राज्य वैकुंठ का भगवत धाम कहलाता है। अब भगवान की दो शक्तियों का संचालन का वर्णन करते हैं। भौतिक जगत भगवान की बाहर अंग शक्ति के संचालन में है और भगवान की अंतरंग शक्ति का संचालन वैकुंठ लोक में है। तो वहां योग माया संचालन करती है, यहां महामाया संचालन करती है। वहां भगवान की अहलादिनी शक्ति का साम्राज्य है और यहां दुर्गा देवी का साम्राज्य है। वैकुंठ लोक में भगवान तथा उसके निवासियों के मध्य कोई सामंजस्य नहीं रहता, अतएव वैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है। भगवान की सृष्टि है वो, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि पूर्ण है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में अपूर्णता है। किस बात की अपूर्णता है? कि उसमें भगवान से असमंजस्य के कारण वो इस संसार में डाले गए हैं। तो उनमें अपूर्णता है। किस बात की अपूर्णता है? भगवान की सेवा से अलग होकर भोग करने की उनकी भावना है। वहां भय का कोई कारण नहीं है, भगवान की सृष्टि में भय का कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसे पूर्णतया सामंजस्य युक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं है। वहां की हर वस्तु चर्म है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक रचनाएं होती है किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती है, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं फिर भी मशीन के कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह वैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी भगवान की सेवा में पूर्णतया संलग्न रहते हैं। शरीर में आंख है, कान है, नाक है, सर है, पांव है, लेकिन सारों का मूल के काम क्या है? पेट को कैसे भरना है, यही एक काम है ना, पेट कैसे भरना है। तो सारे अंग अलग हैं लेकिन सारों का उद्देश्य पेट भरने में। ऐसे मशीन के अंदर हजारों छोटे छोटे पुर्जे, कार के अंदर कितने पुर्जे, लेकिन सारे का काम क्या है? कार को चलाना। तो सारे उस काम के लिए उसके अंदर रखे गए। ऐसे वैकुंठ में जितने भी निवासी हैं वो भगवान की पूर्णता सेवा में लगे हुए हैं। तो इस दुनिया में क्या अंतर है? हम पूर्णता सेवा में नहीं लगे हुए। जब काम पड़ता है तब भगवान की सेवा थोड़ी कर देते हैं, घंटी बजा देते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, काम उतर जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो पूर्णतया नहीं लगे हुए हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी हम दूसरे काम में लग जाते हैं। ये अंतर है दोनों में। तो ये दो उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने, एक शरीर के सारे अंगों का और दूसरा मशीन के पुर्जों का। दोनों का उद्देश्य मशीन को चलाना और पेट भरने में है। अब दूसरी लाइन के ऊपर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कौन सी लाइन के ऊपर? नभ शिव। ये बहुत प्रिय श्लोक लगता है मायावादियों को। इस श्लोक का अर्थ जब मायावादी करते हैं ना, तब कहते हैं जो घड़े के अंदर आकाश है, घड़ा फूटेगा तो बड़े आकाश में मिल गया तो दोनों एक हो गए। ये उनका सिद्धांत है। एक ये सिद्धांत है कि घट आकाश, घट टूटेगा तो बड़े आकाश में मिलके एक हो जाएगा। घड़ा टूटा, उसके अंदर जो आकाश था बड़े में मिलके एक हो गया। एक तो ये सिद्धांत है। दूसरा उनका सिद्धांत है कतरा बूंद पानी की समुद्र में जाएगी तो समुद्र हो गई। ये दो सिद्धांत मायावादी विशेष रूप से देते हैं। अब प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं। मायावादी दार्शनिक अर्थात निर्विशेषवादी, मायावादी को अर्थात निर्विशेषवादी का अर्थ क्या है? कोई विशेषता नहीं है, सब एक जैसा है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या से ये अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बृहद आकाश एक है, किंतु ये भाव युक्ति युक्त नहीं लगता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमृतसर में गए थे प्रचार करने, कोई बड़ा सम्मेलन था, उसमें बुलाया था, कुछ भक्तों के संग गए थे। सर्दी का दिन था, दिसंबर के, तो बहुत से मायावादी सन्यासी भी आए हुए थे। तो एक मायावादी सन्यासी ने प्रवचन में कहा कि देखो, जैसे उदाहरण दिया, जैसे कंबल के अंदर एक धागा होता है, वो और उसके में और कंबल में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे ठीक है। कंबल के अंदर एक धागा, जो रात को ओढ़ेंगे कंबल, उसमें एक धागा और सारे कंबल में अंतर तो नहीं है। रात को प्रभुपाद का एक शिष्य उसके ओढ़े हुए कंबल को उतार के उसको एक धागा दिया, बोला ये ओढ़ के सो जाओ। बोला मर जाऊंगा सर्दी। बोला तुमने बोला कंबल और धागे में अंतर नहीं है ना, तो धागा ओढ़ के सो। आधे घंटे के बाद छठल बोला मेरा धागा मेरा कंबल वापस दो। बोला नहीं नहीं, तुम धागे में सो, अंतर कोई नहीं है ना। ओ महात्मा, रात को परेशान हुआ, बोला फिर चलो हमारे गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करो, बोलो कंबल और धागा एक नहीं है, कंबल सर्दी से बचाता है, धागे से डर लगता है। तो ये उदाहरण ऐसा है कि छोटा आकाश बड़ा बका आकाश एक है कहते हैं प्रभुपाद जी। अब क्या कहते हैं सुनिए, बृहद आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहद आकाश स्वयं शरीर है और आंतें तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश है। शरीर के प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है, यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सृजित जीव या सृजित कोई भी वस्तु उस शरीर के केवल लघु अंश हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यह शरीर मानो पूरा आकाश है, इसके अंदर आंतरियां हैं, दिल है, फेफड़े हैं, ये अलग अलग सब हैं, लेकिन हैं सब इस शरीर के अंदर, लेकिन शरीर से अलग है, एक तो नहीं है। ऐसे तो नहीं हम इसको खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं होगा, सब एक प्लेन मिट्टी अंदर से निकलेगी, जैसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। अरे अलग चीज अंदर अलग अलग है, लेकिन सारों का काम है शरीर को चलाना। ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, ये तो ठीक है, लेकिन हम सब इसके अंदर अलग अलग है। जैसे पेट में आंतरी अलग है, गुर्दा अलग है, और दिल अलग है, फेफड़े अलग है, तो ये सब एक तो नहीं है ना, सब एक है। हरे कृष्णा, क्या ये प्रसाद वाले आ रहे हैं क्या? हाँ? 9 बजे के बाद आने वाले कथा वाले तो नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा ये भावार्थ पढ़ के पूरा करते हैं, तो ये बात समझ में आई, ये पढ़ा भावार्थ समझ में आया, भावार्थ क्या बात समझ में आई कि हर एक अंग अंग का अपना अपना महत्व है। दिल का काम है खून को, नहीं कोई कह नहीं, सभी एक है, दिल और अंतरी एक है। हम आलू सब्जी दिल में डालेंगे और अंतरी में खून डालेंगे तो मर जाएंगे, तो सब एक कैसे हो गए? अब कोई एक सोराख करके यहां से दिल में एक सोराख किया जाए और थोड़ी देर के बाद सब्जी और आलू और दिल के अंदर डाल बोला सभी एक है, क्या फर्क पड़ता है, डालो दिल के अंदर आलू सब्जी और आंतों के अंदर खून को बोलो अंदर दौड़े तो कोई क्या काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, तो सब एक कैसे हुए? सबको एक नहीं खा सकते, सब एक की सेवा कर रहे हैं ये मान सकते, लेकिन सब समान है ये नहीं मान सकते। सब समान कैसे हो गए? एक दृष्टि से कहेंगे सब समान, जैसे कभी कहते हैं सोना सोने की खान में और हमारे एयरिंग का सोना एक है, हमारी अंगूठी का सोना एक है, बराबर सोना एक है, शक्ल में अलग है, ये तो बात मानते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारी अंगूठी के सोने और सोने की खान में अंतर भी तो है ना। सोने की खान पहन सकता है कि सोने की खान में जाके बैठ जाओ, खाएगा क्या? तो अंतर है हर चीज में, अंतर को समझना चाहिए, जो और अंतर उसके अंदर गहराई में, ये कभी भी संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण, जैसे पानी मिलके कतरा मिलके समुद्र हो जाता है, प्रभुपाद कहते हैं समुद्र में भी तो 9 लाख जीव रहते हैं, वो समुद्र के आनंद लेते रहते हैं ना, वो समुद्र तो नहीं है। समुद्र में कितने 9 लाख समुद्र के अंदर जीव है, स्पीसीज लाइफ की है, वो तो समुद्र बन के एक तो नहीं हो गए। तो ऐसे वैकुंठ के अंदर कभी प्रभुपाद कहते हैं हरा तोता हरे पेड़ के अंदर जाता है तो तोता दिखता नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि तोता पेड़ बन गया, तोता तो अंदर आम खा रहा है लेकिन तुमको नहीं दिख रहा है। ऐसे ये उदाहरण का खंडन किया जा रहा है मायावाद का, ये कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि सारे जीव जो कि भगवान के विभिन्न अंश है शाश्वत तौर पर विभंश रहते हैं। कहां बोला है? ममाइवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन का अर्थ सदा के लिए मेरा अंश, ऐसा नहीं है कि सनातन, ऐसा नहीं है कि बाद में मेरे से मिलके एक हो जाएंगे। सनातन शब्द जो कहा गया है, ये जीव मेरे अंश है कब, सनातन मतलब पहले से अलग हैं बाद में अलग रहेंगे, ये कभी मिलके एक होंगे, ये श्लोक का अर्थ नहीं है, ये उस श्लोक का उल्लेख है। मायावादी दार्शनिकों के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को विभिन्न अंश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वो परम पूर्ण से तदाकार होता है, यह सिद्धांत वैध नहीं है। इसका मतलब एक में प्रभुपाद ने लेक्चर एक दिया, कहा कि सब कहते हैं मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सभी भगवान जो गलियों में घूमते हैं वो भगवान, बोले ये तो भगवान को बहुत छोटा बना दिया आपने। फिर प्रभुपाद ने कहा तो फिर गार्ड और डाग में क्या अंतर है, जीओडी गार्ड, डीओजी डाग। अगर गार्ड तुम्हारा गलियों में घूमता है डाग की तरह, तो गार्ड और डाग में अंतर क्या हुआ? तो ये जो मानते हैं कि सभी भगवान, मैं भगवान, तू भगवान, ये ऊपर से माया उतर जाएगी तो हम भगवान हो जाएंगे, ये तो भगवान को बहुत लघु करने के विचार है। भगवान गली गली में घूमने वाला थोड़ी है। दरिद्र नारायण, दरिद्र का मतलब गरीब, भगवान गरीब है गली में घूम रहा है, नहीं ये ठीक ये गलत सिद्धांत है। भगवान हर एक भगवान है तो फिर संसार में धक्के क्यों खा रहे हैं? भगवान क्यों इस दुनिया में दुखी हो रहा है? भगवान थोड़ी, भगवान तो आनंदमय है। जीव और भगवान में अंतर है, ये सिद्धांत समझना चाहिए। दोनों में एकता है, किस बात में, गुणों में, लेकिन उनकी गुणों में एकता जरूर है, लेकिन भगवान वृद्ध है और जीव सीमित है। वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोकों में फूट डालो और राज्य करो की राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं है। डिवाइड एंड रूल वैकुंठ में नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि वैकुंठ में से कभी भी विष्णु को उतार के दूसरे किसी को राजा नहीं बनाया जा सकता। इसका अर्थ है कि भगवान एक ही है और कोई बदल के कभी भगवान नहीं बन सकता। इसका अर्थ ये है। फूट डाल के बांटने का अर्थ क्या है कि उसको उतार के दूसरा राजा बनाया जाएगा ना, ये तो पॉलिटिक्स हो गई। तो वैकुंठ में पॉलिटिक्स नहीं है, वैकुंठ का राजा सदा के लिए आदि पुरुष भगवान है, वहां कभी कोई दूसरा राजा होगा ये संभावना नहीं है। एक भक्त ने कहा अरे हमारे सिद्धांत ऐसा है, भगवान तो हम कभी बन नहीं सकते हैं, अब क्या करना चाहिए, कम से कम गुरु तो बने। एक भक्त बेचारा बहुत सरल बुद्धि का था, बोला भगवान तो हम बन नहीं सकते, हमारी फिलॉसफी में अलोई नहीं है, तो कम से कम गुरु तो बनने का प्रयास करना चाहिए। और फिर कह दिया गुरु बनूंगा तो आप लोग मुझे माला फूलों की मत पहनाना, रसगुल्ले की माला पहनाना, खाता रहूंगा। सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक भक्त था, यहां रहता था और यहां से ब्रह्मचारी छोड़ के शादी करने गया। पत्नी जब उसको मिल गई तब रिक्शे का किराया नहीं था। पत्नी बोला तुम रिक्शे का किराया नहीं तो खिलाएगा कहां से, वहीं से चली गई। पत्नी को ले जाने के लिए रिक्शे का किराया नहीं था बेचारे के पास। लड़की तो शादी करने के लिए शाबत तैयार हो गई, लेकिन रिक्शे में बैठने के सामने किराया नहीं था, छोड़ के चली गई। हरे कृष्ण। क्यों नहीं है वहां फूट डालने की? क्योंकि भगवान तथा निवासियों के सर्वथा एक है। माया का अर्थ है जीवों तथा भगवान के बीच असामंजस्य, और वैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। तो माया किसको कहते हैं? जहां एक दूसरे की लड़ाई कराई जाती है, जहां लड़ाई की जाती है उसको माया कहते हैं। वस्तुतः सारे जीवों का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम जीव है। किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम जीव के वश में होते हुए भी उसके अस्तित्व की अवमानना करते हैं, और वो स्थिति माया कहलाती है। हम सब भगवान के संचालन में रहते हैं, भगवान हमारा सबका भरण पोषण कर रहा है। जब हम समझते हैं कि हम खुद अपना भरण पोषण करते हैं, इसको माया बोलते हैं। मैं घर चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं आपको पालन कर रहा हूं, ये माया है। भगवान सबको चला रहा है, ये वैकुंठ का भाव है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कुछ शिष्यों ने कहा हम जाते हैं बाहर से जब दान लाते हैं तभी ये आश्रम चलता है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये सुना, बोला आज से कोई ब्रह्मचारी बाहर कलेक्शन पे नहीं जाएगा, सभी यहाँ बैठो, यहाँ भोजन का अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। और कुछ नहीं, सब लोग अपने आप आके दे गए, सब खा रहे थे। तो ये मूर्खता होती है, कब शिष्य समझता है कि मैं लाता हूँ तब ये मंदिर चलता है। यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे होते थे और कुछ दान लेके आते थे, कहते थे ये ब्रह्मचारी लाल कपड़े वाले, हम लाते हैं तब खाते हैं। अरे मूर्ख, कृष्ण बलराम सबको दे रहा है, तुम कहाँ से खिलाते हो? ये माया है, ये माया है। और ये माया हमारे बीच में भी आती है और आपस में लड़ाती है। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसे कोई जीव भी है। उनका कहना है कि हर वस्तु शून्य है। और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार करते हैं, जैसे हो सकता है कि ईश्वर है किंतु उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति है के कारण उत्पन्न होती है। भगवान है, एक तो कहते हैं नास्तिक भगवान है ही नहीं, और दूसरा कहते हैं हो सकता है लेकिन उसका कोई रूप रंग नहीं है। ये दोनों के दोनों भगवान के विरोधी, भगवान नहीं है अथवा है तो उसका कोई रूप रंग नहीं है, ये दोनों भगवान के विरोधी। रूप रंग होगा आएगा कहेगा कि मैं बैठा हूं तो फिर हमारी परेशानी हो जाएगी। रूप रंग नहीं है तो हमारे को जो चाहेगा वो हम कर लेंगे। हम अपन स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए हमने ये धारणाएं बना रखी है। जब तक ये विद्रोही अवस्था बनी रहती है तब तक भौतिक जगत में असमंजस्य बना रहता है। सामंजस्य या असमंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून है तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्ति या कृष्ण भावना अमृत बताया गया है। अब प्रभुपाद जी साफ बात कहते हैं कि कौन लोग धर्म के ऊपर चलते हैं अथवा कौन लोग हैं जो वैकुंठ में जाने के अधिकारी हैं। सर्वधर्मान परित्यजाम एकम शरणम व्रज, ये भगवान का धर्म है। सब तुम्हारे बनाए हुए तथाकथित तथाकथित धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। बस जो इसको मानता है वो भगवान से समंजस में है, असमंजस में है। जो ये नहीं मानता है वो भगवान से भगवान का विद्रोही है। बस ये पूरे इस भाव इस टुकड़े का ये अर्थ है। ये है धर्म। जब मनुष्य को इसका पूरा पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर है और वो उसी के अनुसार कर्म करता है तो वही असली धर्म है। जो भी वस्तु इस सिद्धांत के विरुद्ध जाती है वो धर्म नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों का त्याग कर दो। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत का ये धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है। इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में सर्वधर्मान परित्यज का कानून चलता है, इसलिए कोई पाप है ही नहीं तो भगवान को कुछ परेशानी किसी को है नहीं, सभी शांत है। अगर हम ये अगर श्लोक को हम ठीक तरह अपने जीवन में उतारें तो हम यहां भी वैकुंठ बना सकते हैं। ऐसे किसी भी संघ या समिति के साथ होता है तथा यथा अंतर्राष्ट्र कृष्ण भावना अमृत संघ। प्रभुपाद कहते हैं हमारा इस्कान वैकुंठ है क्योंकि इसके अंदर भक्तों के बीच में कोई भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे इस्कान को देखना चाहते हैं कि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए पूर्णतः सब अपने आप को समर्पित कर दें और यहाँ भगवद गीता के आदर्शों सिद्धांतों के अनुसार चलता है कृष्ण भावना, इसलिए हमारा ये स्कान वैकुंठ जैसा वातावरण हमारा है। बस एक और बात कह के कथा समाप्त करते हैं। हमारे सीखने के लिए इससे ये है, वृंदावन प्रभुपाद जी का घर है ये कृष्ण बलराम मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का धाम है या भगवान रह रहे हैं। हम जितने भक्त इस मंदिर में रह रहे हैं वो जय विजय की तरह यहाँ के सेवक और द्वारपाल हैं। यहाँ के आने वाले यात्रियों का कौन कैसा आता है उसको न पहचान पाए तो किसी का नरादर कभी मत करना। यहाँ आने वाला कौन है आप पहचान नहीं पाएंगे। प्रभुपाद ने अपने समय में हरिश्री प्रभु अपने जीवन में बताते हैं कि किसी को उसने प्रसाद खाते को उठाया था और प्रभुपाद ने कहा तुम पहचानते नहीं हो, किसी को उठाया क्या, वो ढूंढने के बाहर वो मिला नहीं वापस। तो ऐसे कुछ ऐसे कोई पुरुष आते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, इसलिए अपराध न हो जाए तो हमेशा करना क्या चाहिए था, जय विजय को हाथ जोड़ के कहना था जी आप आए हैं, बहुत बड़ा आपका स्वागत है, आप दो मिनट यहाँ रुकिए, जलपान कीजिए, तब तक हम आपको ले जाने के लिए रथ लेके आते हैं, कह के जाके वैकुंठ भगवान से पूछते कि चार कुमार खड़े हैं, तो कोई समस्या थोड़ी थी, उनको शांत भी किया जा सकता था। तो किसी व्यक्ति को निरादर नहीं करना चाहिए। हमने अपने जीवन में या 15 साल में अनुभव किया है, कभी कोई छोटा बच्चा दिखता है हमको और लगता है कि प्रभुपाद के पास जा रहे हैं, हटो हटो हम कहते हैं, हमको बच्चा वो दिखता है, लेकिन अगले पहले जन्म में वो यहाँ भक्त कभी रहा है, अब दोबारा जन्म लेके आया, हमसे बहुत सीनियर हो सकता है वो, उसने पहले सेवा की है तब वहाँ जाने की उसके मन में इच्छा हो रही है। तो कभी कभी अपराध की दृष्टि से हम किसी का अपमान न कर बैठे, यहाँ वे अगर रह रहे हैं तो ये भी भगवान का धाम है, यहाँ रहने वाले सारे भक्त सेवक हैं, और सेवक के धर्म में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। सेवक के धर्म में किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है ये उसको देखने का अधिकार है, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए हमारा अनुभव ये है कि भाई बहुत से लोग आते हैं यहाँ रहते हैं और न पहचानने कारण कोई न कोई अपराध होता है, इसलिए फिर वहां से यहाँ से बाहर भागना पड़ता है, और हमारे आंखों के सामने हम ही उनके अंदर है, आते हैं और भागना पड़ता है, आते हैं और भागना पड़ता है। इसका कारण एक ही है कि हम अपराध करते हैं, कोई नहीं जान सकते कौन आया था, किसी के प्रति हृदय में भी घृणा का भाव आ जाता है कभी, ये कहां से यहां आ गया, मुसीबत कहां यहां पड़ा हुआ खड़ा हुआ, आगे आगे भगवान के, लेकिन नहीं नहीं भगवान के घर में अगर आ ही गया है तो अधिकारी है तब आया है, नहीं तो नहीं आ सकता था, नहीं तो नहीं आ सकता था। तो ये धारणा हमको सीखनी चाहिए, यहाँ रहने वाले सेवकों को उदारता और दया का भाव रख के प्रभुपाद के मेहमान समझ के उसके घर में आए, सबका सम्मान करना चाहिए यथाउचित, किसी का निरादर कभी किसी हालत में मत करना, ये गलती धाम में बहुत बड़ा दूर तक परेशानी का कारण बन सकती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, महाप्रसाद की। 1 घंटा 2 मिनट 1 घंटा